معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے ناول طوفان کے مسافر. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آواز اسرا سرور، پیشکش محمد اظہر، مصنف ایم اے راحت. مزید ناول کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0300-2919-600، 0321-2138-225. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. آرتھر کراؤزے جیسے باہمت آدمی کے لیے یہ کلمی کتاب ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی تھی. وہ خطرناک مہمات کا شائق تھا اور نوجوانی کی زندگی سے لے کر اب تک اس نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ لوگ انشد بدنار رہ جاتے. جوان وہ اب بھی تھا، اس کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک جوان رہے گا جب تک اس کی کوئی ناکامی اسے بوڑھا ثابت نہ کر دے. ویسے بھی اس کی عمر 50 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس کی کلائی کی ہڈی کی چوڑائی دیکھ کر ہی اچھے اچھے جوانوں کو پسینہ آ جاتا تھا. اس سے مسافہ کرنے والے اس کے ہاتھ کی سختی محسوس کر کے فیصلہ کر لیتے تھے کہ اس شخص کی دشمنی کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے. اپنے ساتھیوں اور واقف کاروں میں وہ گینڈے نام سے مشہور تھا. آرثر نے زندگی میں کبھی کوئی ملازمت، کوئی تجارت نہیں کی تھی، لیکن وہ ملک کے مالدار ترین لوگوں میں شامل ہوتا تھا. اس کے پاس بے شمار جواہرات اور قیمتی نوواردات تھے. یہ سب کچھ اسے اپنے والدین یا خاندان کے کسی اور شخص سے ورثے میں نہیں ملا تھا. اس کے برعکس آرثر کا باپ ایک معمولی ملاح تھا اور آرثر کا بچپن انتہائی غربت کے عالم میں گزرا تھا. یہ سب کچھ اس نے اپنی قوت بازو سے حاصل کیا تھا. دفینے اور پراسرار خزانے تلاش کرنے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، اور نہ جانے کتنے خزانے اس کی تجوریوں میں محفوظ تھے. ملک کے جرائم پیشہ لوگ ان خزانوں کی کہانیاں سن کر دل میں گدگدی ضرور محسوس کرتے تھے، لیکن ان کے حصول کے تصور سے کانپ جاتے تھے اور دل میں خود کو ملامت کرتے. زندگی بہرحال ان خزانوں سے قیمتی تھی، جان ہے تو جہان ہے، اور آرثر کے خزانوں پر ہاتھ ڈالنے سے کم از کم زندگی کی ضمانت تو ملنا مشکل تھی. اس لیے آج تک کسی زیالے نے اس کی عالیشان کوٹھی میں داخل ہونے کی جرات نہیں کی، اور یہ بات آرثر کے لیے بھی سکون بخش تھی. پولیس کے ریکارڈ میں وہ شریف اور معزز آدمی تھا. موجودہ کتاب اس کی ایک دوست نے اسے لا کر دی تھی. اس کے دوست کو یہ کتاب ایک کباڑیے کی دکان سے دستیاب ہوئی تھی. کتاب کا نام تھا سمندر کے نوواردات. اس کتاب کا مصنف ایک مشہور سیاح تھا جس نے بے شمار سفر کیے تھے اور جو مہمات کا شہنشاہ کہلاتا تھا. خود کراؤزے اس سے بے پناہ عقیدت رکھتا تھا، چنانچہ اس کی تحریر کو مستند نہ سمجھنا کم از کم کراؤزے کے لیے ناممکن تھا. پچھلے 3 دن سے وہ اس کے مطالعے میں مصروف تھا. یوں تو پوری کتاب ہی اپنے اندر میں بے شمار دلچسپیاں رکھتی تھی، لیکن کراؤزے کو اس کے جس حصے نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ سمندر کے اندر پوشیدہ خاک خزانے کا تذکرہ تھا. یہ خزانہ مصر کی خونی ملکہ کلو پترا کا خزانہ تھا. کلو پترا اس عظیم شان خزانے کو خفیہ طور پر کہیں منتقل کرنا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے اپنے معتبروں کے ساتھ ایک شاہی جہاز میں یہ خزانہ کسی نامعلوم جگہ بھیج دیا. جہاز اپنا سفر طے کر رہا تھا کہ اسے طوفان نے آ لیا اور وہ غرق ہو گیا. جس سیاح نے یہ کتاب لکھی تھی اسے اس خزانے کی تفصیلات چمڑے کی ایک دستاویز پر ملی تھی، جو قدیم مصری زبان میں کلیو پترا نے ایک مہمت کے لیے لکھی، جس کے سپرد اس خزانے کی حفاظت کی گئی تھی. سیاح نے اس خزانے سے اپنی دلچسپی کا اظہار ضرور کیا تھا، لیکن وہ اسے حاصل کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا. چنانچہ اس نے دعوت عام دی تھی کہ جو گیالہ اسے حاصل کرے اس لحاظ سے یہ کتاب فراؤزے کے لیے چیلنج تھی. سمندر کے اس حصے کے مکمل نقشے موجود تھے. چنانچہ چوتھے دن فراؤزے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس پراسرار خزانے کو ضرور تلاش کر لے گا. بلا شبہ ایسے زندگی گزارنے کے لیے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اس کے پاس اتنا کچھ موجود تھا کہ وہ کیا بلکہ اس کی کئی پشتیں اعلیٰ زندگی بسر کر سکتی تھی. لیکن یہ سب کچھ دولت کے حصول یا زندگی گزارنے کے لیے تو نہیں تھا. اسے تو دفینوں اور خزانوں کا شوق تھا. کلیو پترا کے خزانے میں کیا کچھ نہ ہوگا، اور یہ سب کچھ فراؤزے کے لیے بہت دلکش تھا. 50 سالہ فراؤزے نوجوان کی سوچ رکھتا تھا. اس کے ذہن نے اس مہم کے لیے اپنے ساتھیوں کا انتخاب کیا اور ایک فہرست تیار کر کے مطمئن ہو گیا. سب سے پہلے اسے پروفیسر ٹامس سے ملنا تھا. ٹامس بھی اس کا ہم عمر تھا. اس کی طرح فارغ البال اور مہمات کا دل دادا. چند معاملات میں ٹامس اس کا بھی ساتھ دیتا تھا. بے پناہ مطالعے نے اسے بے پناہ صلاحیتیں بخش دی تھیں. کسی بھی سلسلے میں فورسی طور پر سوچنے اور کاروائی کرنے میں وہ اپنی مثال آپ تھا. فراؤزے کو بہت پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ بیشتر مہمات میں شریک رہا تھا. چنانچہ فراؤزے کی چمچماتی کار سڑکوں پر دوڑی ہوئی ٹامس کی خوبصورت کوٹھی کے آئینی دروازے پر پہنچ گئی، جس پر دو قدم آدم شیر سے پہرا دے رہے تھے. سفید وردی میں ملبوس چوکیدار نے بندوق کی نال نیچے کر کے اسے سلامی دی اور شیر کی دم موڑ دی، جن سے دروازہ جلترنگ کی آواز پیدا کرتا ہوا کھل گیا. ڈرائیور نے کار اندر داخل کر کے پورچ میں روکی اور پھرتی سے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا. فراؤزے نیچے اتر آیا. اس عمارت میں داخلے کے لیے کسی تکلیف کی ضروریات نہیں تھی، حالانکہ ٹامس رکھ رکھاؤ کا عادی تھا، لیکن یہ عادت بے تکلف دوستوں کے لیے نہیں تھی. ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے فراؤزے نے ایک ملازم سے کہا، مسٹر ٹامس کو ڈرائنگ روم میں بھیج دو، میں انتظار کر رہا ہوں. ملازم اس کی پوری بات سننے سے قابل ہی اندر دوڑ گیا اور فراؤزے مسکراتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا. ایک خوبصورت اور آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر اس نے دونوں پاؤں پھیلا دیے اور اپنی پسندیدہ تصویر کو دیکھنے لگا. اس صوفے کے عین سامنے تھی. اس تصویر میں ایک آکٹوپس نے ایک بڑی مچھلی کو اپنے سونڈوں میں جکڑا ہوا تھا. آکٹوپس کی آنکھوں کی شیطانی چمک اور مچھلی کی غرض نیز بوکلاہٹ تصویر کی جان تھی. ہلنا میں ایسا لگتا تھا جیسے مچھلی ابھی پوری قوت سے تڑپنے لگے گی اور تصویر کا سمندر کمرے میں رینگ آئے گا. چند لمحات گزرے تھے کہ ڈرائنگ روم کا خود کار دروازہ زور سے کھلا اور ٹامس کا بڑی مونچھوں والا چہرہ مسکراتا اندر گھس آیا. ہیلو گینڈے، پورے 3 ماہ کے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے، اس نے بے تکلفی سے کہا اور لپک کر فراؤزے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا. فراؤزے نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کو 2-3 جھٹکے دیے، جس سے ٹامس کی مسکراہٹ میں کچھ کمی واقع ہوئی. اس نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے ایک صوفے کا سہارا لیا اور کراتے ہوئے بولا، کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ ان ہاتھوں سے ابھی مجھے بہت کام کرنے ہیں، اس لیے تو میں نے توڑنے کی کوشش نہ کیا کرو. राउजे ने एक बार फिर भरपूर कहकर लगाया और बोला, और मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम नस्वानी अंदाज में कुरहना छोड़ दो, वरना किसी दिन तुम्हारा बाजू शाने से अलग कर दूंगा। वादा, टॉम्स ने जल्दी से कहा और फिर सोफे पर लगी घंटी का बटन दबा दिया। बावर्दी मुलाजिम अंदर दाखिल हो गया। तुम्हारे रात वाले तजुर्बे से मैं बहुत मुतमईन हूँ और इस वक्त भी वही कॉकटेल पीने का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरा दोस्त क्राउजे भी क्या याद करेगा कि मेरे यहाँ कैसे कैसे कॉकटेल एक्सपर्ट मौजूद हैं। मुलाजिम ने अदब से गर्दन झुकी और बाहें निकाल ली। तो आजकल तुम कॉकटेल बनाने के तजुर्बात कर रहे हो, क्राउजे ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं नहीं, मेरे मुलाजिम मेरे लिए तजुर्बात करते रहते हैं। बिलाशुबा रात को इस शख्स ने एक शानदार कारनाम अंजाम दिया है। डिच ऑफ मार्कोस तो इस फार्मूले को मालूम करने के लिए बेचैन था। खूब, वो मोहतरमा अब भी तुम्हारे गिर्द टकराती रहती हैं। तो जवानों का एक जवान हूँ क्या समझते हो, टॉम्स ने अकड़ते हुए कहा और दोनों दोस्त हंसने लगे। थोड़ी सी देर में मुलाजिम ने ट्रॉली धकेल कर अंदर ले आया। एक खूबसूरत जग में काफी रंग की कॉकटेल मौजूद थी जो न जाने कितनी शराबों को मिलाकर बनाई गई थी। शराब के दूसरे लवाजमात भी मौजूद थे जिन्हें मुलाजिम ने सलीके से इनके सामने सजा दिया और बाहर निकल गया। जाम भरे टकराए और होटल से चिपक गए। क्राउजे ने खुलूस दिल से कॉकटेल की तारीफ की और फिर मतलब पर आ गया। डिश ऑफ मार्कोस की तुमसे दिलचस्पी ये बात तो साबित नहीं करती कि तुम बुढ़ापे की तरफ नहीं जा रहे हो, इसने शराब का एक बड़ा घूंट लेते हुए कहा। क्या आज तुम मेरी तौहीन कराने का प्रोग्राम बनाकर आए हो, टॉम्स ने गुस्सीले अंदाज में गिलास की तमाम शराब हलक में उंडेल कर गला साफ करते हुए कहा। हाँ, इत्मीनान से बोलो। क्यों? इसलिए कि तुम मूड़ों के अंदाज में घर में घुस कर बैठने के आदी हो गए हो। फिर क्या करूं, कहां जाऊं, तुम्हारा अंदाज भी तो मुझसे मुख्तलिफ नहीं है। क्या तुम कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे सके? बेशक नहीं, लेकिन मैं तगड़ों में जरूर रहता हूँ और जिस वक्त भी कोई दिलचस्प खबर मेरे कानों में पहुंच जाती फौरन काम शुरू कर देता हूँ। खूब, तो क्या तुम्हारे ख्याल में मक्खियां मारता रहता हूँ, प्रोफेसर टॉम्स ने आंखें निकालते हुए कहा। के साथ ही इसने जग से अपने क्राउजे के ग्लास में शराब उंडेली थी। चलो नीलम, लेकिन तुमने अब तक क्या किया, क्राउजे ने दिलचस्प अंदाज में बात आगे बढ़ा रहा था। कुछ नहीं, और तुमने मेरे दोस्त, मिस का लहजा तंजिया हो गया। क्राउजे ने बड़े सुकून से अपना ग्लास उठाया और इसके छोटे छोटे घूंट पीने लगा। इस दौरान टॉम्स के चेहरे पर फतामंदी की मुस्कुराहट फैल गई। वो समझ रहा था कि क्राउजे अपनी लाजवाबी को शराब की आड़ में छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्राउजे ने पूरे सुकून से अपनी शराब खत्म की और ग्लास का पैंदा तक साफ करने के बाद बोला, हाँ। क्या मतलब, प्रोफेसर टॉम्स ने जल्दी से अपना ग्लास नीचे रख दिया। एंजा के करीब जजीरे क्लाटू से 64 मील दूर समंदर के नीचे मादाम क्लियोपेट्रा ने हमारे लिए सोफा छुपा रखा है। मिस्र का वो खुफिया खजाना जैसे क्लियोपेट्रा अपने महल में महफूज नहीं समझती थी। यकीनन ऐसी चीज होगी जिसके हुसूल के बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल है। ओ, मगर क्या तुमने इस खतरनाक खजाने को ख्वाब में देखा था, प्रोफेसर टॉम्स ने अपने इस्तराब मजा की आड़ में छुपाने की कोशिश की। मैंने तो नहीं, अलबत्ता अगर डॉक्टर साइंस एंसवर्स ने इसे ख्वाब में देखा हो तो मैं नहीं कह सकता। क्या बकवास है, आज तुम मुझे क्यों जिद करने पर तुले हुए हो, साफ बात करो, मेरे दोस्त सम्राट का दूसरा जान नहीं, इस वक्त मिलेगा जब तुम इस बारे से मुकम्मल तफसील बता दोगे। टॉम से जग अपने हाथ में पकड़कर पीछे हाथ हटाते हुए कहा, ओ, इस उम्दा शराब के लिए मैं कोई झगड़ा मोल लेने से दरेक करूंगा। जग इधर रख दो और तुम इस किताब का वो हिस्सा खोल कर पढ़ डालो जिस मैंने क्लिप कर दिया है। ट्राउजर ने जेब से किताब निकाल कर प्रोफेसर टॉम्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा और टॉम्स ने जग जल्दी से मेज पर रखकर इसके हाथ से किताब झपट ली। सुर्ख दिल की दस्ती किताब को खोल कर वो इसके क्लिप किए हुए कागज दुरुस्त करने लगा और क्राउजे इत्मीनान से जग खाली करता रहा। फिर इसने इस वक्त इसकी तरह देखा जब टॉम्स ने किताब बंद करके मेज पर रखी जबकि इस दूसरी बॉस की खुफिया किताबें सियाहों की रहनुमाई कर चुकी हैं। बहरे सूरत इसे छोड़ो, तुमने इसे बार में क्यों प्रोग्राम बनाया था? प्रोफेसर टॉम्स के बगैर मैंने आज तक कौन सा प्रोग्राम बनाया है? तुम मेरे दोस्त टॉम्स की तौहीन नहीं कर सकते, क्राउजे ने दिलचस्प अंदाज में कहा। ओ मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है क्राउजे, बिलाशुबा हम दोनों एक दूसरे के बगैर नाकारा हैं। तो फिर अब मादाम क्लोपत्रा के खजाने को यहाँ तक हिफाजत लाने का फैसला किया है, यह आपके ऊपर मुनसर है प्रोफेसर टॉम्स। मैं तो सिर्फ ये फैसला करके आया हूँ कि हमें एमनेजा के समंदरों की गहराई नापनी है और प्रोफेसर टॉम्स मेरे साथ होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, प्रोफेसर टॉम्स के अलावा और कौन कौन तुम्हारे साथ होगा? टॉम्स ने पूछा। इसके लिए भी मैंने एक पहले तैयार की है लेकिन तुम इस पर नजरसानी कर सकते हो। इसमें से कोई नाकाम निकालने और दूसरा नाम शामिल करने की तुम्हें मुकम्मल इजाजत है। प्रोफेसर टॉम्स ने फेरिस कागज क्राउजे के हाथ से लिया और इसे बगौर देखने लगा। कई मिनट तक कागज का जायजा लेने के बाद इसने गहरी सांस ली और पूरे इत्मीनान अंदाज में बोला, मुझे यकीन रहा कि तुमने उम्दा लोगों का इंतखाब किया होगा और बिलाशुबा ये लोग काबिल एतमाद और दिलेर हैं। इस किस्म की मुहिम के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत थी। बहरहाल दूसरे मसाले रह जाते हैं, मसलन किसी ऐसे छोटे जहाज का बंदोबस्त। मेरा ख्याल है तुम इस बारे में अपने दोस्त ओलेवन से मदद लोगे। इसकी कंपनी के छोटे जहाज हमारे मियार पर पूरे उतरते हैं। ये सब कुछ मैं कर लूंगा, तुम इन लोगों को इकट्ठा करने और कारोबारी मामला तय करने का काम संभालो। और अब मुझे इजाजत दो, यूं भी तुम्हारे जग की कॉकटेल खत्म हो गई है, क्राउजे ने उठते हुए कहा और प्रोफेसर टॉम्स भी मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। गोताखोरी की जदीद तरीन लिबास में मलबूस 6 गोताखोर आज 8वीं बार समंदर की तह में उतर गए। इन्हें नए प्रोफेसर टॉम्स और आर्थर क्राउजे भी थे। ये दोनों भी माहिर गोताखोर थे और इससे कबल दुनिया के बहुत से खतरनाक समंदरों की तह खंगाल चुके थे। दूसरी मेहमान में इन्हें इस कदर मायूसी नहीं हुई थी जितनी क्लोपत्रा के खजाने की तलाश में। अगर इस तारस इमरा एक काबिल एतमाद सिया ना होता और इसकी पहली इतला दुरुस्त ना होती तो वे सोचने पर मजबूर हो गए होते कि इस खजाने की बातें एक मजाक से ज्यादा अहमियत नहीं रखती और वो बड़े आला पैमाने पर बेहद बेवकूफ बनते। लेकिन ये सारस एम्ब्रा की तहरीरों के साथ ही थी कि आज आखिरी बार वो समंदर में उतरे थे, इस मुहिम उम्मीद के साथ कि शायद पहली बार वो इस पिस्ते की अच्छी तरह तलाशी ना ले सके हों। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, पहली बार जब वो इस हिस्से में उतरे थे तो इनकी हिम्मत जवान थी और सलाहियतें बेदार। लेकिन वहां आने की गुरकाब शिदत जहाज के निशाना तक ना मिले थे। पूरे दिन की सख्त तलाश के बावजूद इन्हें कुछ ना मिला तो इनके दिलों में हल्की सी मायूसी पैदा हो गई। वापस जहाज पर पहुंचकर इन्होंने आपस में मशवरा किया और फैसला किया कि शायद वो सही जगह का तायुन नहीं कर सके हैं। चुनाचा इस बार इस इलाके से कुछ हटकर खजाने की तलाश शुरू की गई। लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पार। अभी हिम्मत बाकी थी, इससे ज्यादा मायूसी ना हुई और तीसरी बार तमाम गोताखोर मुख्तलिफ सिमतों में निकल गए। समंदर की गहराइयों में तनहा सफर बेहद खतरनाक था लेकिन वो खतरात से बेनियाज अपने काम की धुन मस्त थे। शाम को जब थकान से निढाल वो सब ऊपर पहुंचे तो सब ने एक ही कहानी सुनाई, यानी मायूसी की कहानी। और इस चीज की नाकामी ने इन्हें उदास कर दिया। ऐसा लगता है क्राउजे के समंदर की तह कि किसी तूफान या खजाने को यहाँ से कहीं और ढकेल दिया है। क्यों ना हम कोशिश जारी रखें और इस इलाके से जरा आगे बढ़ जाएं। अब यहाँ तक सफर किया है तो थोड़ी सी तकलीफ और सही। क्राउजे और दूसरे लोग भी इस बात के लिए तैयार हो गए और जहाज को वहां से आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन ये हिमाकत थी, समंदर इतना तवील था कि पूरी जिंदगी में इसका मामूली हिस्सा भी तलाश नहीं कर सकते थे। सातवीं बार की गोताखोरी के बाद इनके साथियों ने भी समंदर में मजीद उतरने से इनकार कर दिया। बेमकसद गोताखोरी से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कर्ब जवार का पूरा समंदर छान मारा गया था लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी जिस पर क्लोपोत्रा के जहाज का शुबा हो सकता। अब वो लोग कह भी क्या सकते थे। चुनाचा नाकामी का एतराफ कर लिया गया। सब लोग उदास थे। मुमकिन है हमसे पहले भी किसी की नजर इस किताब पर पड़ गई हो और इसने वो खजाना हासिल कर लिया हो, टॉम्स ने कहा था। मुमकिन है, क्राउजे ने मुंह लटकाते हुए कहा था। उदासी कैसी मेरे दोस्त, वो खजाना हमारा शौक था, जरूरत नहीं। इसी बहाने यहाँ तक सैर हो गई। रह गए ये दूसरे लोग तो इन्हें मुआवजा तलब है, इन्हें तयशुदा मुआवजा अदा कर दिया जाएगा। ट्रस्ट एंड्रा की बात पर भरोसा ना करने की कोई वजह नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि किताब कबाड़ी के पास आने से कबल किसी और के हाथ लग गई हो और वो पहले ही अपना काम कर चुका हो। क्राउजे ने इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, हाँ हो सकता है, आखिर किताब किसी न किसी जरिए तो कबाड़ी तक आई ही होगी। फिर अब क्या प्रोग्राम है मिस्टर टॉम? वापसी? मैं आखिरी बार समंदर की तह का जायजा और लेना चाहता हूँ। वो किस खुशी में? मेरा मतलब है अब ऐसी कौन सी जगह है जिसे तुम देखो ना चाहते हो? बस ये मेरी ख्वाहिश है, अगर दूसरे लोग तैयार ना हुए तो ये काम मैं तैयार करूंगा। गो तुम्हारी ये ख्वाहिश पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है। तहम मैं साथ दूंगा, टॉम्स ने कहा। और दूसरी सुबह जब क्राउजे गोताखोरी का लिबास पहनकर अपने केबिन से बाहर निकला तो इसके सामने पांच गोताखोर खड़े थे जिनमें एक डॉम्स था। इसने किसी न किसी तरह दूसरे लोगों को भी समंदर में उतरने के लिए तैयार कर लिया था और ये आठवीं गोताखोरी थी। वो सब समंदर की तह में पहुंच चुके थे। लजली घास के सब्जार चारों तरफ फैले हुए थे। नीचे की फिजा शफाफ थी, तमाम चीजें आंखों के सामने नुमाया थी। मछलियों के गोल नौ गलिश थे, गूंगे करोड़ में बदल रहे थे। कभी कभी किसी बड़ी मछली की आमद माहौल के सुकून को दरम बरम कर देती। छोटी मछलियां जाती बचाने के लिए पैर तीर की तरह दौड़ती और वो दूर निकल जाती। अगर कुदरत इन्हें ये तेजी ये फुर्ती ना बख्शती तो शायद इनकी जिंदगी महाल होती और इस तरह समंदर इस खुशनुमा मखलूक से महरूम हो जाता। वो सब आगे बढ़ते रहे। क्राउजे की नजर तंदिया तय के एक एक पत्थर का जायजा ले रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी, एक अनोखा ख्वाब। वो बहुत सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अगर एक पत्थर को वो बड़ी एहतियात से छूता और आगे बढ़ जाता, और वो पत्थर ही था, यकीनन पत्थर जो ऊपर से नोकीला था। क्राउजे ने उस पत्थर को छुआ और आगे बढ़ गया लेकिन चंद गज दूर निकलकर वो रुक गया। ये नोकीला पत्थर तमाम पत्थरों से कुछ मुख्तलिफ था। इसके अंदर पानी की खराश के अलावा वो निशानात नहीं थे जो दूसरे पत्थर में होते थे। आखिर क्यों और इस क्यों के जवाब के लिए वो फिर पलट पड़ा। टॉम्स इससे थोड़ी दूर पर था। इसे पलटते देखकर वो भी पलटा और इसके नजदीक पहुंच गया। क्या बात है, इसने मुंह के नजदीक लगे हुए आले से पूछा, जिसके जरिए इसकी आवाज किराउजे के कानों तक पहुंच सकती थी। इस पत्थर को देख रहे हो, किराउजे ने कहा और टॉम स्वीट नुकीली पत्थर को देखने लगा। फिर इसने पुश्त के हुक में लटके हुए बैग से मजबूत स्टील की कदा निकाली और इसे मजबूती से पकड़कर पत्थर की चोट लगाई। अगर पत्थर होता तो कदार की नोक कुछ न कुछ काम करती, लेकिन कदार इसी पर से उछट गई। ये पत्थर नहीं है, नॉन ने पुजोश लहजे में कहा। नहीं है ना, फिर क्या हो सकता है, ट्राउजे भी मुस्कुराना अंदाज में बोला। और टॉम्स ने दूसरे लोगों की आवाज दी। फिर नमाज के बाद सब एक जगह जमा हो गए और से देखने पर कुछ अजीब से निशानात आए, जैसे इस पत्थर का सिलसिला दूर तक चला गया हो। ना जाने क्यों क्राउजे और टॉम्स बहुत ज्यादा पुरुमीर हो गए थे, ना इस जगह एक निशान लगाया गया था और तमाम गोताखोर कदालों से निशानात पर खुदाई करने लगे। समंदर के नीचे की जमीन ज्यादा सख्त साबित ना हुई और फिर वो जमीन थी कहाँ, वो तो बारीक जरात थे जो इस फौलाद की शेय के गिर जमा होकर इसे ढकने में कामयाब हो गए थे। 6 घंटे की सख्त मेहनत के बाद वो फौलाद के इस तैयार ढांचे को ऊपर से साफ करने में कामयाब हो गए थे और अब वो ढांचा बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। लेकिन इसकी हैसियत देखकर वो सब अंशत बना रह गए। क्लूपत्रा के जमाने में आबदोजी ईजाद नहीं हुई थी जो वो अपना खजाना किसी आबदोज के जरिए कहीं मुंतकिल कर दी। इसका मतलब है कि ये खजाने वाला जहाज नहीं है। फिर ये जदीद तरीन आबदोज कहाँ से आई, ये हमारी मतलूबा शय नहीं है। क्राउजे, खजाने की तलाश कर दो और मुझे बताओ कि क्या तुम इस आबदोज में दिलचस्पी ले सकते हो। क्यों, क्या ये हमारे लिए पुरकशिश नहीं है, किराउजे ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक है, समंदर के इस वीरान हिस्से में इस पुरस्कार और जदीद तरीन आबदोज का मिलना दिलचस्प और हैरतनाक है। मेरा ख्याल है कि हम इसे खोलने में कामयाब हो सकते हैं। आओ देखें, मुमकिन है कोई दिलचस्प राज हमारा इंतजार कर रहा हो। और वो सब आबदोज के ऊपरी हिस्से की तलाश में मसरूफ हो गए। जदीद दौर के लोग थे, इन चीजों से पूरी तरह वाकिफ, चनाचा आबदोज के दाखिली हिस्से को तलाश करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अंदर दाखिल होने का दरवाजा तलाश करने और उसे खोलने में काफी कुव्वत सर्फ करनी पड़ी और सबसे पहले नीचे उतरने वाला क्राउजे था। टॉम जिसकी फौरन बाद उतर आया। यहाँ इन्हें पानी में इस्तेमाल होने वाली टॉर्चें रोशन करना पड़ी थी क्योंकि तारीकी थी। टॉर्चों की रोशनी में वो छोटे से केबिन का जायजा लेने लगे जो जरीर अशिया से आरास्ता था। टॉम्स एक एक हिस्से का बगौर जायजा ले रहा था। फिर वो पुरस्कार आवाज में बोला, बिलाशुबा ये जरीर तरीन आबदोज है। तुम ये लीवर देख रहे हो और इसके साथ ये नन्हे नन्हे सुराख। मेरा ख्याल है दबाने के बाद आबदोज में पानी नहीं रहेगा और पानी बाहर निकालने के बाद आबदोज के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ जा सकता रहे। हम इसके निचले हिस्से में चलेंगे, क्राउजे ने जवाब दिया। जरूर, टॉम्स ने भी इसी जज्बे से कहा और फिर मुंह के सामने लगे हुए आए आले में दूसरों से भी नीचे आने की दरख्वास्त करने लगा। चल लम्हे में सब इस केबिन में पहुंच गए। तब टॉम्स ने इस लीवर पर जोर आजमाई की और लीवर आसानी से घूम गया। इसके साथ ही वो ऑटोमेटिक ढक्कन अपनी जगह फिट हो गया जो दाखिली दरवाजे पर था और फिर जबरदस्त दबाव के साथ पानी बाहर निकलने का तेज सरसराहट के साथ केबिन पानी से खाली होता जा रहा था और फिर चंद लम्हात के बाद वे खुद जगह खड़े थे। पार्ट 1 यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होता है। नॉवेल तूफान के मुसाफिर का बकिया हिस्सा पार्ट 2 में समाप्त फरमाइए।